शुरू से ही मैं रेहान को देखती आ रही थी, ज़ुबैदा बेगम ने भरे गले से कहा। वो हर काम में परफेक्ट था, अपने काम पर पूरा ध्यान, हर बात में सटीक। ऐसा कोई काम ही नहीं था जो वो ना कर सके। कभी कभी मुझे उससे जलन भी होती थी कि उसका बेटा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। और फिर अनजाने में मैं तुमसे भी वही उम्मीद करने लगी। मुझे लगता था कि जब रेहान गलती नहीं करता तो तुमसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहते कहते ज़ुबैदा बेगम रो पड़ी। अरमान की हालत अब उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो उदास रहता था, रातों को सोता भी नहीं था। मॉम, प्लीज चुप हो जाइए, रोने की कोई बात नहीं है, अरमान ने धीरे से अपनी माँ को संभालते हुए कहा। मैं तुम पर शक नहीं करती थी, ज़ुबैदा बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। बस डरती थी कि कहीं तुम गलत रास्ते पर ना चले जाओ, तुम बहक ना जाओ। आप ये डर निकाल दीजिए मॉम, अरमान ने धीरे लेकिन ठहराव के साथ कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ज़ुबैदा बेगम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी डर बाकी था। मैं तुम्हें रेहान की तरह परफेक्ट बनाना चाहती थी, उन्होंने टूटती आवाज में कहा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट, उसने नजरें झुका ली। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। ज़ुबैदा बेगम कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, और रिदा से शादी? उनके मन में अब भी एक डर था, कहीं अरमान इस रिश्ते से पीछे ना हट जाए। अरमान ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, मैंने कहा ना मॉम, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। ये सुनते ही ज़ुबैदा बेगम खुद को रोक नहीं पाईं, वो आगे बढ़ीं और अरमान को गले लगा लिया। अरमान ने भी अपनी माँ को कसकर थाम लिया, जैसे दोनों एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हों। दोनों रो रहे थे, एक अपने डर के लिए, दूसरा अपनी मजबूरी के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि इस पूरे खेल के पीछे असली चेहरा कौन है। ज़ुबैदा बेगम जिस रेहान को आज तक परफेक्ट समझती आई थी, असल में वही सबसे बड़ा धोखा था। उसी ने अरमान के खिलाफ जहर बोया था, उसी ने उसके नाम को बदनाम किया और उसी ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी को तोड़ दिया। लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे था, और जब ये सच सामने आएगा तो सिर्फ रिश्ते नहीं भरोसे भी टूटेंगे। सादिया जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई, बैठते ही उसने मेट को जूस लाने के लिए कहा। आओ सादिया, फरीद खान ने उसे बड़े प्यार से बुलाया। और ये बताओ, रेहान अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया? ऊपर ही है कमरे में, कल रात देर से सोए थे, सादिया ने सहज बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। रेहाना बेगम ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। तीनों, फरीद, रेहाना और सादिया चुपचाप नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर बाद रेहाना बेगम ने बात शुरू की। रेहान बता रहा था कि तुम कल जल्दी सो गई थी। सादिया के हाथ हल्के से रुक गए, उसने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, उन्हें क्या पता होगा, वो तो खुद ही रात को काफी देर से आए थे। उसकी आवाज में हल्की सी चुभन थी जो शायद सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। उसने खुद ही बात संभालने की कोशिश की। रेहाना बेगम ने एक नज़र अपने शौहर की तरफ डाली, फिर बोली, मैंने तो सकीना को रात 11 बजे तुम्हें बुलाने भेजा था, तब रेहान ने ही कहा कि तुम सो रही हो। सादिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। 11 बजे? उसने हैरानी से पूछा, इतनी रात को क्या काम था? सब खैरियत तो है ना? ऑफिस में मुझे पता चला तुमने फाइल घर भिजवाने से मना कर दिया, फरीद खान ने सीधा सवाल किया। बेटा, एक साइन के लिए इतना बोझ लेने की क्या जरूरत है, फाइल यहीं आ जाया करेगी, उन्होंने नरमी से कहा, मगर उनके लहजे में वही पुरानी चालाकी छिपी थी जिससे वो हमेशा बात को अपने हिसाब से मोड़ लेते थे। लेकिन इस बार सादिया पहले वाली सादिया नहीं थी, अब वो उनके बेटे की ही नहीं उन दोनों की सच्चाई भी जान चुकी थी। सादिया ने शांत नजरों से उनकी तरफ देखा। आपको तो पता है ताया अब्बू, उसने बहुत सधे हुए लहजे में कहा, रेहान कितने डिस्टर्ब रहते हैं, कितना काम होता है उनके पास, अगर मेरे काम का बोझ भी उन पर आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनका काम बांटना चाहती हूँ, कम करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फरीद खान और रेहाना बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार फरीद खान कुछ कहते उससे पहले ही रेहाना बेगम बोल पड़ी, क्या मतलब बेटा, क्या कह रही हो तुम? सादिया ने बिना झिझक जवाब दिया, मतलब जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं खुद जाकर पूरी करूंगी। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, इतना ठोस, इतना नया कि रेहाना बेगम के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सादिया इस तरह खड़ी होगी, लेकिन इस फैसले की कोई वजह भी तो होगी, फरीद खान ने अब सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सादिया हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत कुछ छुपा रही थी। मेरे हर फैसले की वजह बस एक ही होती है, और वो क्या है? फरीद खान ने तुरंत पूछा। आपका बेटा, सादिया ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। कुछ पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा गया। उसने कुछ कहा है? फरीद खान की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। उनके पास टाइम कहाँ होता है, सादिया ने लापरवाही से कहा, और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वो आराम से नाश्ता करने लगी। रेहाना बेगम का दिमाग तेजी से चलने लगा। कुछ तो बदल चुका था, और ये बदलाव मामूली नहीं था। वो हर वक्त अपने काम की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, सादिया ने जैसे खुद ही बात आगे बढ़ाई। तो मैंने सोचा, अगर मैं उनका काम शेयर नहीं कर सकती तो कम से कम अपना बोझ उन पर न डालूं। इसलिए मैंने अपने काम से ही उन्हें राहत देने का फैसला किया है। उसने आखिरी शब्दों पर हल्का सा जोर दिया, जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रही थी, एक संकेत दे रही थी। और पहली बार फरीद खान और रेहाना बेगम को महसूस हुआ कि खेल अब उनके हाथ में नहीं रहा। मुझे पता है रेहान कितना स्ट्रेस में रहता है, कितना काम होता है उसे, तो शायद इस तरह से उनके पास मेरे लिए थोड़ा वक्त निकल आए, सादिया ने बिल्कुल सहज लहजे में कहा। उसी वक्त मेट जूस का ग्लास उसके सामने रखती है। सादिया बीबी, आपकी सैंडल भी निकाल दिए हैं, मैचिंग वाले जैसे आपने कहा था। थैंक यू, सादिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मगर उसकी नजरें एक पल के लिए फरीद खान और रेहाना बेगम पर गईं, जैसे वो उनके चेहरे पढ़ रही हों। कहीं जा रही हो तुम? रेहाना बेगम ने माथा पकड़ते हुए पूछा। हाँ, डॉक्टर के पास जाना है आज, सादिया ने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा। आप भूल गईं क्या? रेहाना बेगम के जैसे होश उड़ गए। कुछ तो गड़बड़ था। सादिया ने आराम से जूस का घूंट लिया, फिर सकीना की तरफ देखकर बोली, ड्राइवर करीम को बोलो मुझे उसके साथ जाना है। फिर जैसे कैजुअली लेकिन बहुत सोच समझ कर जोड़ा, और हाँ, मेरे कमरे में 10 बजे के बाद कोई मत आना, मेरी नींद खराब होती है। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन शब्दों में साफ चेतावनी छुपी थी। ये सिर्फ सकीना के लिए नहीं था, ये सीधा फरीद खान और रेहाना बेगम के लिए था। जैसे वो साफ कह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। जी, सकीना ने धीरे से कहा। सादिया एक बार फिर दोनों की तरफ देखती है और बिना कुछ कहे उठकर चली जाती है तैयार होने के लिए। उसके जाते ही कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फरीद खान और रेहाना बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा। बहुत अच्छा होता आप इससे सारे डॉक्यूमेंट पहले ही साइन करवा लेते, रेहाना बेगम ने दबे गुस्से में कहा। फरीद खान की आंखों में सोच गहरी हो गई। तुम इसके साथ हॉस्पिटल जाओ, उन्होंने धीमे लेकिन ठहराव के साथ कहा, बाकी मैं संभाल लूंगा। दोनों की नजरें मिली और बिना शब्दों के ही जैसे कोई नया प्लान बन चुका था। उन्हें अब अंदाजा हो गया था सादिया बदल चुकी है, लेकिन सादिया ये नहीं जानती थी कि वो जिनसे टकराने जा रही है वो कितने खतरनाक हैं। ये खेल अब खुलकर खेला जाएगा, और इसमें चालें भी होंगी और धोखे भी। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें।